आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सरकार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्कों को फतेह करने के बजाय दिलों को जीतने के भारत के नजरिए पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मुद्रा योजना के रोल को उजागर किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दुबई के वली अहद शहजादा शेख हमदान ने भारत मुत्तहिदा अरब अमारात कलीदी साझेदारी को फरोग देने के लिए मुस्तकबिल के इश्तराक पर तबादले ख्याल किया है। राजस्थान की खसूसी अदालत ने 2008 के जयपुर बम धमाकों के केस के सिलसिले में चार कसूरवार अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मरकजी सरकार ने एक रियासत एक इलाकाई देही बैंक पॉलिसी के तहत 26 इलाकाई देही बैंकों के इंजमाम का ऐलान किया है। और आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी कानून 2025 आज से नाफिज हो गया है। हुकूमत ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से इस सिलसिले में मंजूरी दिए जाने के पेश नजर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने इस बिल को मंजूरी दी थी। इस नए कानून का मकसद विरासती मकामात के तहफ्फुज़ और समाजी फलाह बहबूद के फरोग से मुतालिक ज़ाब्तों के साथ वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को ठीक करना है। इसका मकसद इमलाक के बंदोबस्त में शफाफियत में इजाफे, वक्फ बोर्ड और मकामी इंतजामिया के दरमियान तालमेल को बेहतर करके और मुतालिका फरीकों के हुकूक के तहफ्फुज के जरिए हुक्मरानी में सुधार करना है। वक्फ तरमीमी कानून का मकसद वक्फ इंतजामिया के लिए एक सेकुलर शफाफ और जवाबदेह निजाम तश्कील देना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय लोग मुल्कों को फतेह करना नहीं चाहते, वो दिलों को जीतना चाहते हैं। सदर जमहूरिया ने आज पुर्तगाल के शहर लिस्बन में चंपालिमाड सेंटर में तहकीक करने वाले भारतीय स्कॉलर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने मजकूरा सेंटर में काम करने वाले भारतीय तहकीककारों को मुल्क के परचम बरदार करार दिया। सदर जमहूरिया ने कहा कि इन तहकीककारों ने भारत की शान बढ़ाने में नुमाया रोल अदा किया है।
भारत का संस्कृति, भारत का परंपरा, भारत के लोगों के चाल चलन चेहरा, उनका बात करने का तरीका, उनका संस्कृति एक चलते फिरते भारत का झंडा है। आप भी मुझे लगता है ये इस चीज को अच्छी तरह से समझते होंगे और आपको भी मैं कहना चाहूंगी कि भारत का गौरव को बढ़ाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है।
इससे पहले जुनूबी यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल के अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन सदर जमहूरिया ने वहां की असेंबली के स्पीकर से बिलमुशाफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह की बातचीत भी की। वजारत खारजा के मुताबिक ये बातचीत मुफीद रही और फरीकैन ने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की पार्लियामेंट के अरकान के साथ गुफ्तगू की और भारत पुर्तगाल पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान के साथ बातचीत भी की। सदर जमहूरिया पुर्तगाल और स्लोवाकिया के अपने सरकारी दौरे के पहले मरहले में कल लिस्बन पहुंची थी। उन्होंने पुर्तगाल के अपने हम मनसब मार्सिलो रिबेलो डी सूजा के साथ वफूद की सतह की बातचीत की। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर शोबे के सेक्रेटरी तन्मय लाल ने सदर जमहूरिया के पुर्तगाल के सरकारी दौरे के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 27 साल के बाद ये पहला सरकारी दौरा है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया का ये दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्क सिफारती ताल्लुकात फिर से कायम होने के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना से खवातीन को माली इमदाद फराहम करके न सिर्फ बाइख्तियार बनाया गया है बल्कि उनके लिए मुख्तलिफ मौके भी दस्तियाब कराए जा रहे हैं ताकि वो अपने कारोबार की कमान संभाल सकें और इसे फरोग दे सकें। जनाब मोदी ने मजकूरा स्कीम से एक तरह का इनकलाब बरपा होने का तस्किरा किया और कहा कि खुद अपना कारोबार करने की समत माशरे के रवैये में नुमाया तब्दीली आई है। वजीर आजम ने अपने मुद्रा योजना को 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मजकूरा स्कीम से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही।
सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं, यानी ये एक नया क्षेत्र और विकसित भारत के लिए जो संभावनाएं ना वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गारंटी की जरूरत के बगैर मुद्रा योजना के तहत मुल्क के शहरियों को 33 लाख करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मजकूरा स्कीम के तहत 52 करोड़ कर्जे तकसीम किए गए हैं, जो एक ऐसी बड़ी कामयाबी है जिसकी आलमी सतह पर कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब मोदी ने मुल्क के बासलाहियत नौजवानों में अपने एतमाद का इजहार किया, जिन्होंने रोजगार के मौके दस्तियाब कराने और मईशत को तकवीत पहुंचाने के लिए फंड्स को मौसर अंदाज से इस्तेमाल किया।
मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। देश में 52 करोड़ लोन दिए गए हैं। 52 करोड़ लोन यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, दुनिया के किसी देश में ये सोच भी नहीं सकते हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे और बहुत छोटे कारोबार करने वाले अफराद को 20 लाख रुपए तक के ऐसे कर्जे फराहम किए जाते हैं जिनमें किसी तरह की जमानत या गारंटी की जरूरत नहीं होती। गुज़िश्ता 10 साल में मजकूरा स्कीम के तहत तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए मालियत के 52 करोड़ से ज्यादा कर्जे मंजूर किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। एक प्राइवेट मीडिया के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस गैर मामूली तरक्की में नौजवान पेश पेश हैं। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है।
आज दुनिया की नज़र भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं, बहुत कम समय में। अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए लेकिन भारत रुका नहीं, भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और एक दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है।
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में दुबई के वली अहद शहजादे, मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-दिफा शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मख्तूम से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यूएई ने भारत यूएई जामे कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस खसूसी दौरे से भारत यूएई की गहरी दोस्ती और मुस्तकबिल में और मजबूत शराकतदारी की राह हमवार होने का इरादा होता है। इससे कबल दिन में यूएई के नायब वजीर आजम ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मीटिंगें की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तर तआवुन और सरगर्म ताल्लुकात से मुतालिक वली अहद शहजादे के मुस्बत ख्यालात की सताइश की। वजीर दिफा ने सोशल मीडिया की पोस्ट पर कहा कि मीटिंग सूदमंद रही। उन्होंने कहा कि यूएई के साथ जामे कलीदी शराकतदारी भारत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा बरसों में भारत दिफाई इश्तराक, साजो सामान मिलकर तैयार करने और तरक्याती प्रोजेक्टों में इश्तराक की खातिर पुर उम्मीद है। वली अहद शहजादे भारत के 2 रोजा दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किए जाने और सरहद पार से दरअंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वो आज श्रीनगर में मुत्तहिदा ہیڈ کوارٹرز کی اعلیٰ سطح کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب امت شاہ نے مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور موجودہ ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر کے راج بھون میں اعلیٰ سطح کی دو میٹنگوں کی صدارت کی۔ ان میٹنگوں کا مقصد جموں کشمیر کے لیے مرکزی سرکار کے ترقیاتی ایجنڈے کے تحت کلیدی بنیادی ڈھانچے اور فلاحی اقدامات کی پیش رفت کا برسر موقع جائزہ لینا تھا۔ متحدہ ہیڈ کوارٹرز کی میٹنگ میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تپن ڈیکا، فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی اور دیگر اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہمراہ جموں کشمیر میں جاری ترقیاتی پروجیکٹوں اور بنیادی ڈھانچے کے کلیدی اقدامات سے متعلق جائزہ میٹنگ میں شرکت کی۔ جناب امت شاہ جموں کشمیر کے 3 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
امت شاہ آج سری نگر میں جموں کشمیر میں ترقیاتی کاموں پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وہ سلامتی کے مجموعی منظرنامے اور اس سال 3 جولائی کو شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے حوالے سے بھی جامعہ جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، وزارت داخلہ کے سینئر افسران، جموں کشمیر پولیس، فوج، سینٹرل آرمڈ پولیس فورس، مرکزی اور جے اینڈ کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ ترین افسران شریک ہوں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ کا جموں کشمیر کا دورہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کے قومی سلامتی کو مضبوط بنانے، سیکورٹی فورسز کی فلاح و بہبود کو مستحکم کرنے اور جموں کشمیر میں امن اور ترقی کو آگے بڑھانے پر مسلسل توجہ مرکوز کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
جموں کشمیر میں مزید 3 سیاسی تنظیموں نے علیحدگی پسند حریت کانفرنس سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ ان میں جموں کشمیر اسلامک پولیٹیکل پارٹی، جموں کشمیر مسلم ڈیموکریٹک لیگ اور کشمیر فریڈم فرنٹ شامل ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے بھارتی آئین میں لوگوں کے اعتماد کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ راجستھان کی خصوصی عدالت نے 2008 کے جے پور بم دھماکوں کے کیس میں 4 قصوروار افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ایک بم لگانے کے الزام میں 4 افراد کو اس مہینے کی 4 تاریخ کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ یہ بم پھٹا نہیں تھا اور بعد میں اسے بے اثر کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 13 مئی 2008 کو جے پور کے پرانے شہر کے چاند پل بازار میں پیش آیا تھا۔ راجستھان کے جے پور میں ہٹ اینڈ رن کے ایک معاملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا ہے کہ یہ واقعہ جے پور کے ناہر گڑھ علاقے میں کل رات اس وقت پیش آیا جب شراب کے زیر اثر ایک ڈرائیور نے اپنی گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دی، جس میں 9 افراد زخمی ہوئے۔ اس معاملے کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ میں مالی خدمات سے متعلق محکمے نے ایک ریاست ایک علاقائی دیہی بینک کے اصول پر مبنی 26 علاقائی دیہی بینکوں کے انضمام کو نوٹیفائی کیا ہے۔ یہ علاقائی دیہی بینکوں کے انضمام کا 4th مرحلہ ہے۔ وزارت نے گزشتہ برس نومبر میں انضمام سے متعلق منصوبہ متعارف کیا تھا، جس کا مقصد پچھلے مراحل کے مقابلے کارکردگی کو بہتر کرنا ہے۔ کانگریس پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں کی میٹنگ آج گجرات کے احمد آباد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل میموریل پر ہوئی۔ پارٹی کے اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں 150 سے زیادہ ارکان نے شرکت کی۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں 22 ماؤ نمازوں نے آج سیکیورٹی فورسز کے سامنے خود سپردگی کر دی۔ ضلع کے ایڈیشنل پولیس سپرنٹینڈنٹ چندرکانت گوورنا نے بتایا کہ ان میں سے 4 ماؤ نمازوں پر 26 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ T20 میں آج ایڈن گارڈنز میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 4 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹ کے نقصان پر 238 رن کا بڑا اسکور بنایا۔ لکھنؤ سپر جائنٹس کے لیے مشیل مارش اور نکولس پورن نے نصف سینچریاں بنائیں۔ چنڈی گڑھ میں ایک دوسرے میچ میں میزبان پنجاب کنگز نے چنئی سپر کنگز کی جیت کے لیے 220 رن کا نشانہ دیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی وقف ترمیمی ایکٹ نافذ ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملکوں کو فتح کرنے کے بجائے دلوں کو جیتنے کے بھارت کے نظریے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کو با اختیار بنانے میں مدرا یوجنا کے رول کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان نے بھارت متحدہ عرب امارات کلیدی ساجیداری کو فروغ دینے کے لیے مستقبل کے اشتراک پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ राजस्थान की खसूसी अदालत ने 2008 के जयपुर बम धमाकों के केस के सिलसिले में 4 कसूरवार अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।